¿Qué pasa, tú?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayamudirayet. Nashta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki pumajnadvirandasya yananjana shalakaya chaksharan militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udabhata Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakarmitam Sham Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyata Desha Tarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasati Dinamine Shri Vashabhanavi Devi Naitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadhyaya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinakarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Adambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestram Nirdeshta Sajjana Priyaham Vaishnava Sarvabhaumahashti Jagannathayate Namaham Vancha Kalpatarubhyascha Vipasindubhyayivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Namo Vahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishai Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhau Veena Bandhau Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namastute Jetam Suratar Pangur Mamanda Matergati Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohano Divya Drandaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagara Simhasanastho Srimad Radha Srila Govinda Devo Prashtralivya Sevyamano Smarami Sriman Rasrasa Rambi Vamshivata Tatastita Karsham Veno Svaner Gopir Gopinata Shri Estunaha Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲ್ಲಮ್ನೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯೋ ಕೆ ಛೇ ಪ್ರಶ್ನ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಛೇ ಉತ್ತರ್ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ ಕಿ ಐಸಾ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ ಜೋ ಸಾರಾ ಜಗತ್ ಕೋ ಶ್ರೇಯ ಕರ ಹೈ, ಶ್ರೇಯ ಪ್ರದಾನ ಕರ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಐಸಾ ಕೌನ್ಸಾ ಚೀಜ್ ಹೈ, ಯೇ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಜವಾಬ್ ದೇತೆ ಹುವೆ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಯತ್ ಕೃತಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರಶ್ನ ಭವದ್ಭಿರ್ ಲೋಕಮಂಗಳ, ಸಾರೇ ಲೋಕೋಕೋ ಮಂಗಳ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಕಾರ್ಯ ಅಗರ್ ಕುಚ್ ಹೈ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛನಾ. ಯಾನಿ ಆಪ್ನೆ ಜೋ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯಾ ಯೇ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛನಾ ಹಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಂಗಳಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಹೈ, ಯೇ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಜವಾಬ್ ಥಾ. ದೂಸರಾ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕೇನ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ, ಆತ್ಮ ಕೈಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ, ಉಸ್ಕಾ ಜವಾಬ್ ದೇತೆ ಹುವೆ ಉನ್ನೆ ಏಕ ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕಿಯಾ, ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಹಿ ಅಹೇತು ಕಿ ಅಪ್ರತಿಥಾ ಭಕ್ತಿ ಹಿ, ಏಕಮಾತ್ರ ಚೀಜ್ ಹೈ ಜೋ ಹಮಕೋ ಆನಂದ ಪ್ರದಾನ ಕರ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಜೋ ಹಮಕೋ ಸುಖ ಪ್ರದಾನ ಕರ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ತೀಸರಾ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಕ್ಯೋ ಹುವಾ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿ ಔರ್ ವಸುದೇವ ಕೆ ಘರ್ ಕ್ಯೋ ಪ್ರಕಟ ಹುವೆ, ದೇವಕಿ ಔರ್ ವಸುದೇವ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಹೋನೆ ಕೆ ಪೀಚೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಹೈ ಕಿ ಲೋಗೋ ಕೋ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ನಾ, ಯಾನಿ ಬದ್ಧ ಜೀವೋ ಕಿ ಮನ್ ಕೋ ಆಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಧಾಮ್ ಮೇ ಲೇಕೆ ಜಾನಾ ಹಿ ಉನ್ಕಾ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಹೈ. ಚೌಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ಯಾ ಥಾ, ಹಮಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಲಾ ಅವತಾರ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಬತಾಯಿಯೇ, ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜೋ ಕಲಾ ಹೈ ಯಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಯಾನಿ ಶಿವ ಔರ್ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾಯಿಯೇ, ಯೇ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾಯಿಯೇ. ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಗೌಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಗೌಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಜೀವ ಹೈ, ಔರ್ ವಿಷ್ಣು ಕೌನ್ ಹೈ, ವಿಷ್ಣು ಕೇವಲ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಹೈ, ಔರ್ ಬಾದ ಮೇ ಶಿವಜಿ ಕೌನ್ ಹೈ ವೋ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಗುಣ ಅವತಾರ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಆತೆ ಹೈ. ಬಾದ ಮೇ ಔರ್ ಏಕ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ, ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾವತಾರೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೆ, ತೋ ತೀಸರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಅನೇಕೋ ಲೀಲಾವತಾರೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ, ಯಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ ಪಹಲಾ ದೂಸರಾ, ಐಸಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಏಕ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾವೋ ಕಾ ಲೀಲಾವತಾರೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಗಿಂತಿ ಕರ್ನಾ ಬಡಾ ಭೂಲ್ ಹೈ, ಕ್ಯೋ ಅವತಾರ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ, ಅಸಂಖ್ಯ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ವಸ್ತು ಹೈ ಅಸಂಖ್ಯ ಚೀಜೋ ಕೋ ಗಿನ್ನಾ ಹಮಾರಿ ಮೂರ್ಖತಾ ಹೈ, ವೈಸೆ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅವತಾರ ಅನಂತ ಹೋನೆ ಕೆ ನಾತೆ ಉನ್ಕೋ ಗಿನ್ನಾ ಹಮಾರಿ ಮೂರ್ಖತಾ ಹೈ, ಯೇ ಗಲ್ತಿ ಹೈ. ದೂಸರಾ ಗಲ್ತಿ ಕ್ಯಾ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ಕಹಾ, ದೂಸರಾ ಗಲ್ತಿ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಮೈನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಅವತಾರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಗಿನ್ನಾ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಗಲತ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಇಸ್ ಗಲ್ತಿ ಕೋ ಸುಧಾರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಬಾಕಿ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಲೋಗೋ ಕಾ ಯಾ ಅವತಾರೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಹುವಾ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಅವತಾರ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಕೌನ್ ಹೈ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಹೈ. ತೋ ಆಖರಿ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ ಉನ್ಕಾ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನೆ ಧಾಮ ಮೇ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ ಕಲ್ಯುಗ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಕೌನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೇಗಾ, ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಶರಣಂ ಗತಾ, ಉಸ್ಕಾ ಜವಾಬ್ ದೇತೆ ಹುವೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಸುಧಾಮೋಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಹ ಕಲೋ ನಶ್ಚ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ ಕೋದನೋದಿತ, ಕಲ್ಯುಗ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೈಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಧಾಮ ಗಯೆ ತೋ ತುರಂತ ಔರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ ಹುವಾ, ಔರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೌನ್ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣಾರ್ ಕೋದನೋದಿತ, तो ये पुराण के बारे में कहते हुए क्या कहते हैं, ये जो भागवत पुराण है इतना महान है, किस प्रकार उसकी महत्ता है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्येनम महात्। निःश्रेयसाय लोकस्य, लोगों को खास करके कलयुग के लोगों को एकमात्र श्रेय क्या है, भागवत सुनने में है। धन्यम स्वस्ति अयनम महत्, ये हर व्यक्ति को स्वस्ति प्रदान करने वाला है और ये महत है। तदिदम ग्राह्यमास सुखमात्मताम वराम सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तदिदम ग्रायामास सुतम आत्मवताम वराम, व्यासदेव ने इस भागवत को रचना किया और व्यासदेव से ये सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी श्रवण किए और सारम सारम समुद्रतम सारे वेदों का सार निकाल के इस भागवत ने प्रस्तुत किया। सतु संश्रेयमायास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमहं परम ऋषिः। तो ये जो भागवत सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे थे किसको, परीक्षित महाराज को, जब ही अपने प्राण त्याग करने के समय में गंगा के तट के ऊपर सुखदेव गोस्वामी जैसे वर्णन कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैंने उनसे सुना है, मैं सुन के वही भागवत को आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। तत्र कीर्तय तो विप्र विप्रशे भूरि तेजस अहम चाहम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो सुत गोस्वामी पाद कहते हैं नैमिषारण्य ऋषि को, मैंने संक्षिप्त में आपके प्रश्नों का जवाब या उत्तर दिया है, लेकिन मैं जो भी अभी आगे इसको विस्तार से वर्णन करने वाला हूं ये मैंने जो भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है वही चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपने मन की कल्पना से नहीं बता रहा हूं, मन ग्रहण तीज से नहीं बता रहा हूं, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं जोड़ा हूं। ये परंपरा का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो भी मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है उन्हीं चीज को मैं वर्णन करूंगा, लेकिन कैसे वर्णन करूंगा, यथाधीतम यथामति ही, जिस प्रकार मैंने उसको अनुभव किया है उस अनुभव के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी अनुभव से ज्यादा बातों को नहीं कहने वाला हूं, मैंने जो भी अनुभव किया है उस अनुभव के अनुसार मैं वर्णन करूंगा। ये सुत गोस्वामी पाद अभी सारे नैमिषारण्य ऋषि को इस प्रकार कहते हैं। जैसे सबसे पहला नैमिषारण्य ऋषि छह प्रश्न पूछे, सुत गोस्वामी पाद इन छह प्रश्नों को संक्षिप्त में जवाब दिया और उन्होंने कहा अंत में, मैंने जो भी सुखदेव गोस्वामी से सुना है वही आपको प्रस्तुत करूंगा। ये कहने के बाद भागवत का प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में शुरुआत में व्यासदेव कहते हैं ये नैमिषारण्य के ऋषि वापस कुछ प्रश्न पूछे। ये क्या प्रश्न था, ये प्रश्न भागवत के विषय में था और सुखदेव गोस्वामी के विषय में था। इसको विस्तार से नहीं कहेंगे लेकिन संक्षिप्त में ये बात यह है, उनका प्रश्न ये था भागवत कब कहा गया था, कहां कहा गया था और ये भागवत जो है ये व्यासदेव ने रचना किया उस रचना के पीछे उनका प्रेरणा क्या था, और बाद में हमने सुना सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र है, वो जन्म लेते ही वो एकदम वो निकल पड़े जंगल की ओर और हमने सुना कि जब जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी एक तालाब की ओर से जा रहे थे, उधर कुछ स्त्रियां नहा रही थी, वो प्राय नग्न थी, सारे स्त्रियां जब सुखदेव गोस्वामी को देख के उनके अंदर जरा सा भी मन में विकार नहीं आया, लेकिन जैसे व्यासदेव आए तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। ऐसा हमने सुना सुखदेव गोस्वामी इतने महान ब्रह्म स्तर में थे, उनको स्त्री पुरुष के बीच में भेद ही नहीं मालूम है। तो हम इस सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत को सुनाए परीक्षित महाराज को, हम सुनना चाहते। साथ साथ में परीक्षित महाराज ने इतना बड़ा राज्य था उनका, वो सब कुछ छोड़ के भागवत क्यों सुने, ऐसे उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। ये चौथा अध्याय में ये सब प्रश्न था। तब ये प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी पाठ शुरू करते हैं। वो कहते हैं व्यास देव सम्यक प्रास, पता नहीं आप लोग ऐसे कितने लोग बद्री गए हैं, बद्री का आश्रम में एक जगह है जिसका नाम है सम्यक प्रास। सरस्वती नदी के तट में बैठ के उन्होंने सारे वेदों का रचना किया। सारे वेदों को रचना करके चार वेद और पुराण इनको रचना करके उनके अलग अलग शिष्यों को ये जिम्मेदारी सौंप दिया, आप इस वेद का प्रचार करो, आप इस वेद का प्रचार करो। ये सब कुछ व्यासदेव ने किया। करने के बाद व्यासदेव बहुत दुखी थे, इतना सब कुछ करने के बाद भी दुखी थे, उनको मन में संतुष्टि नहीं हो रहा था। जब मन में संतुष्टि नहीं हो रहा था, विचार करने लगे व्यासदेव स्वयं कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे अंदर संतुष्टि क्यों नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं दुखी क्यों नहीं हूं, महाभारत दुखी क्यों हूं, मैं महाभारत की रचना किया और अन्य अनेकों शास्त्रों की रचना किया फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, ऐसा लग रहा है मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में कहीं ना कहीं कमी किया है। ऐसा विचार करते हुए व्यासदेव सम्यक प्रास में बैठे थे। उस समय क्या हुआ, व्यासदेव के गुरु नारद जी पहुंचे। नारद जी जो है हमेशा हर जगह भ्रमण करते रहते हैं, जहां जहां उनको चाहिए उधर भ्रमण कर सकते हैं। ये नारद जी का विशेषता है, नारद की ऐसी शक्ति है वो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम में, और जैसे नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम में व्यासदेव खड़े हुए, नारद जी को स्वागत किए, एक ऊंचे आसन की ओर बिठाए, बिठा के उनको बकायदा जिस प्रकार भगवान की पूजा होता है उस प्रकार उन्होंने पूजा किया। ये गुरु को पूजा करना ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसको गुरु पूजा कहा जाता है। जो व्यक्ति गुरु पूजा नहीं करता वो कभी भी वो योग्य शिष्य नहीं बन सकता। व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है, वो साक्षात नारायण है, लेकिन फिर भी न्याय जैसे नारद जी आए तुरंत व्यासदेव खड़े हुए और नारद जी को स्वागत किए, और अच्छी तरीके से उन्होंने विधिवत या दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी को किस प्रकार पूजा किया जाता है उसी प्रकार व्यासदेव ने नारद जी को पूजा किया। नारद जी को जैसे पूजा किए, अभी पांचवें अध्याय में पहुंचते हैं। पांचवा अध्याय अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपको नारद व्यास संवाद प्राप्त होगा। ये नारद व्यास संवाद है, ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, क्योंकि व्यासदेव सारे वेदों का रचना किए, महाभारत की रचना किए और वेदांत सूत्र को रचना किए, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं थे। तो नारद जी आके व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि आप भागवत की रचना करो। तो भागवत की जो कल्पना है या रचना की जो संकल्प है वो नारद जी के द्वारा दिया गया है। हमने तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद सुना, लेकिन नारद व्यास संवाद भी जानना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध भक्ति क्या है इसका स्पष्ट रूप में निरूपण हुआ है। इसके अंदर ऐसे ऐसे श्लोक है जो हमको सुनने से ऐसा लगता है कि ऐसा है क्या। इसके अंदर इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसलिए हम इन श्लोकों के ऊपर आज चर्चा करने के प्रयास करेंगे। अभी हम कहां तक पहुंचे? सबसे पहला नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी पाद से 6 प्रश्न पूछे थे, उन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है संक्षिप्त में दिया, और अंत में उन्होंने कहा मैं आगे जो भी उसको विस्तार से वर्णन करने वाला हूं मैं वही बातों को कहूंगा मैंने जो सुखदेव गोस्वामी से सुना था, वो है श्रीमद् भागवत। और जैसे सुत गोस्वामी पाद ने इस प्रकार कहा, नैमिषारण्य ऋषियों ने और प्रश्न पूछने लगे भागवत के विषय में, व्यासदेव के विषय में, परीक्षित महाराज के विषय में, और साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी के विषय में वो प्रश्न पूछने लगे। और जैसे वो प्रश्न पूछे तो व्यासदेव का प्रसंग से शुरू होते हुए वो सुत गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। सुत गोस्वामी पाद कहते हैं व्यासदेव सारे वेदों का रचना करने के बाद भी खिन्न थे, तब नारद जी पहुंचे। जैसे नारद जी पहुंचे व्यासदेव ने नारद को बहुत अच्छी तरह से पूजा किया। पूजा करने के बाद क्या हुआ अभी भागवत का प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय का विषय है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं जैसे नारद जी पहुंचे व्यासदेव ने उनको पूजा किया, तब नारद जी व्यासदेव को हंसते हंसते कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए एक गुरु एक शिष्य कि इस प्रकार की जो अवस्था को देख के उनके मुखारविंद में हंसी आ रही है। वैसे ही भगवद गीता में जब अर्जुन एकदम विवश हो गया था, उनकी आंखों में आंसू बह रही थी, तो उस समय कृष्ण उनको देख के हंसते हैं, मुखारविंद में उनको सुंदर हंसी है। ये हंसी क्यों है? क्योंकि जब शिष्य शरणागत होता है गुरु उनके ऊपर प्रसन्न होके हंसते हैं। उसी प्रकार व्यास देव की शरणागति को देख के नारद जी हंसते हंसते उनके मुखारविंद में एक हंसी थी, उस हंसी के साथ उन्होंने ये श्लोक को उच्चारण किया। ये श्लोक पहला ही बम्ब जैसा श्लोक है। नारद जी ने कहा, नारदोवाच पाराश्चर्य महाभागा भवत क्वचिदात्मना परितुष्येति शरीर आत्मा मानस एव। तो नारद जी ने कहा पाराश्चर्य महाभागा, हे पाराश्चर्य व्यासदेव जी कौन है? पराशर के पुत्र होने के नाते व्यासदेव का नाम है पाराश्चर्य। जैसे वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, उसी प्रकार पराशर के जो पुत्र है पाराश्चर्य कहा जाता है। तो ये संस्कृत भाषा में इस प्रकार पिता के नाम पे पुत्र का नाम होता है, पराशर, पराशर मुनि के पुत्र पाराश्चर्य, पाराश्चर्य महाभागा। नारद जी कहते हैं आप महाभागा महान भाग्यवान हो, क्यों? पराशर जैसे महान मुनि के पुत्र हो आप, तो इतने महान मुनि के पुत्र होने के बाद भी आप ऐसा खिन्न क्यों हो? तो नारद जी इस प्रश्न का जवाब देते हुए क्या कहते हैं? इनडायरेक्टली कहते हैं कि भवतः क्वचिदात्मना परितुष्येत शरीर आत्मा मानसा एव। तो नारद जी कहते हैं व्यासदेव से, क्या व्यासदेव जी क्वचित यानी कोई व्यक्ति परितुष्येत, क्या कोई संतुष्ट हो सकता है? यानी दूसरे शब्दों में अगर कोई व्यक्ति इस शरीर को आत्मा मानता है या मन को आत्मा मानता है तो कभी संतुष्ट हो सकता है? दूसरे शब्दों में नारद जी पहले कह दिए, हे व्यासदेव तुम्हारी असंतुष्टि का कारण क्या है? अपने आप को शरीर मानते हो, अपने आप को मन मानते हो, मैं ये शरीर हूं मैं ये मन हूं। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के स्तर में है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यानी दूसरे शब्दों में नारद जी पहले कह दिए व्यासदेव को, हे व्यासदेव आपने अभी तक जो भी लिखा है वो सब क्या है, शरीर और मन के स्तर में लिखा है, शरीर को संतुष्ट करने वाली बातें को लिखा है, मन को प्रसन्न करने वाली बातों को लिखा है, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने वाली बातों को आपने नहीं लिखा। यानी सारे वेदों में, महाभारत में, हर जगह केवल आप शरीर और मन के बारे में कहा, आत्मा के बारे में नहीं कहा है। तो परितुष्येत, क्वचित परितुष्येत, कैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है? तो नारद जी पहले व्यास जी को कह दिए कि क्या कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है अपने आप को शरीर मानने से, अपने आप को मन मानने से? नहीं। ये बड़ा दुख की बात है, खेद की बात है कि हर व्यक्ति जब अपने आप को आईने में देखता है, अपना शरीर को देखता है और सोचता है कि मैं ये शरीर हूं। अंततः जब किसी का मृत्यु होता है तो हम क्या कहते हैं, वो चले गए। अरे क्या पड़ा हुआ है सामने, शरीर तो है ही नहीं, उसका शरीर है। मरने के बाद सब लोग बोलते हैं उसका शरीर है, ये जो पड़ा है उसका शरीर, लेकिन वो चला गया है। लेकिन जीवन भर क्या कहते हैं, ये व्यक्ति ये शरीर है, उसका पहचान जो है वो उनका शरीर का फोटो से होता है। लेकिन मरने के बाद आत्म साक्षात्कार की क्या फायदा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जीवन भर हम बोलते हैं अच्छा ये रवि कौन है, ये रवि है, लेकिन जैसे मृत्यु होता है, नहीं रवि चला गया, ये दिल्ली तो है। ये बात आप पहले ही बोल दिए होते तो रवि का उद्धार हुआ था। नहीं है रवि, तुम इस शरीर के अंदर हो, तुम ये शरीर नहीं हो। जीवन भर हम उसको याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, तुम ये शरीर हो, तुम ही सब कुछ हो। अरे तुम बीमार पड़ गया, तुम वृद्ध हो रहे हो, तुम कितना सुंदर है, ये सब झूठ है। कोई भी व्यक्ति आपकी शरीर को इंगित करके कहता है कि तुम ये हो या आप ऐसे हो, ये सब गलत है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। हमें से कोई ये शरीर नहीं, हम ये शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। शरीर की बात छोड़िए, हम ये मन भी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं नहीं, इसकी आत्मा को दुख मत पहुंचाओ, इसकी मन की इच्छा पूरा करो। उन लोगों का अर्थ ये है उसका मन ही आत्मा है, उनकी मन की इच्छा पूरा करो, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। नहीं, ये शरीर और मन से आत्मा जो है पृथक वस्तु है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। आप कितना भी लाख प्रयास करें शरीर को संतुष्ट करने के द्वारा या मन को संतुष्ट करने के द्वारा, अगर आत्मा प्रसन्न हो जाए, कितना भी प्रयास करे, आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होगा। जिस प्रकार एक मछली, जब वो मछली जल से बाहर निकलता है, जल से बाहर निकल के वो तड़प रहा है, और उस मछली को सोचे नहीं उसको टीवी दिखाएंगे, या इस मछली को हम क्या करेंगे, उसको एसी कमरे में बिठाएंगे, नहीं इस मछली को हम रसगुल्ला खिलाएंगे, क्या इन सब चीज से ये मछली प्रसन्न हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मछली को चाहिए जल। जब तक वो जल में वापस नहीं जाएगा तब तक वो मछली संतुष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम इस जगत में इस शरीर और मन को प्रसन्न करने का कितना ही प्रयास करें, हम असंतुष्ट रहेंगे। इसी बात को नारद जी थोड़ा इनडायरेक्टली कहते हैं। क्या कहते हैं, हे व्यासदेव, क्या कोई व्यक्ति अपनी शरीर या आत्मा को, अपने मन को आत्मा समझने से कोई संतुष्ट हुआ है या हो सकता है? ये पहला प्रश्न था। बाद में और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक उच्चारण करते नारद जी, डायरेक्टली सब्जेक्ट में आगे, इधर उधर के बातें नहीं कहते नारद जी। नारद जी जो है व्यास देव के गुरु हैं, और व्यास देव एकदम खिन्न हैं, बहुत दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, और नारद जी ने व्यास देव को कुछ सांत्वना देने के लिए मीठी मीठी बातों को नहीं कहा, सीधा सब्जेक्ट में आए, सीधा क्या विषय है उसके बारे में कहने लगे। ये है भागवत, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा जो विषय है उसके बारे में बात किया जाता है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, इधर उधर बातें कहने की कोई समय नहीं है। नारद जी सीधा व्यास देव को कहते हैं, क्या शरीर या मन को अपना सब मैं समझ के कोई संतुष्ट हो सकता है? बाद में नारद जी कहते हैं व्यास देव को, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। ने कहा जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम, आपने महत अद्भुत सारे वेदों की रचना किया, साथ साथ में कृतवान भारतम यस्त्वम महाभारत की रचना किया, जो सारे वेदों का अर्थ को प्रकाशित करने वाला महाभारत की रचना किया, सारे वेदों की रचना किया महाभारत की रचना किया। यानी दूसरे शब्दों में नारद जी कहते हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी आप असंतुष्ट हो? अगर कोई कहे व्यास देव का असंतुष्टि का कारण है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्य नहीं किया है, जब कोई अपने योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करता है तो खिन्न रह जाता है, तो व्यास देव ने इतना महान कार्य किया फिर भी वो असंतुष्ट है। दूसरे शब्दों में नारद जी कहते हैं, तुम्हारी असंतुष्टि का कारण अज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने सारे वेदों का रचना किया। आपकी असंतुष्टि का कारण कोई क्रिया नहीं किया, कोई महान कार्य नहीं किया, या लोग जो हैं आपको सराहना नहीं किया, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने महाभारत की रचना किया, वो महाभारत अनेकों लोग पढ़ रहे हैं, ये महान कार्य है, केवल भगवान ही कर सकते हैं वो कार्य। तो कोई कह सकता है कि व्यास देव की असंतुष्टि का कारण है उन्होंने ज्ञान कांड का रचना नहीं किया, या ये जो तर्क शास्त्र है उसको रचना नहीं किया। तो उसके लिए नारद जी कहते हैं, जिज्ञासितमिदितिं च ब्रह्मयत्तत्सनातनम् तथापि सोचस्यात्मनः अकृतार्थाय वा प्रभो। नारद जी कहते हैं, व्यास देव आपका जो असंतुष्टि का कारण है, कोई कुछ सोचे कि आपका असंतुष्टि का कारण है कि ये कारण कि आपने बराबर वर्णन नहीं किया, ब्रह्म तत्व को वर्णन नहीं किया, नहीं, आपने ब्रह्म तत्व को वर्णन किया है, जिज्ञासितमधीतम च ब्रह्मयत्तत् सनातनम्, यानी निष्कलम ब्रह्म को ही वर्णन किया आपने, करने के बाद भी आप असंतुष्ट हो, इसका अर्थ क्या है? कुछ और चीज बाकी है जिसके द्वारा आप संतुष्ट हो सकते हो। अभी जैसे नारद जी ने इस बातों को कहा व्यासदेव को, व्यासदेव स्वयं कहते हैं, ने कहा आपने जो भी कहा बहुत सही कहा गुरु जी। नारद जी को कहते हैं, आपने जो भी मेरे विषय में कहा वो बहुत सही है, मैंने इतना सारा कार्य किया लेकिन फिर भी असंतुष्ट हूं, और आप कौन हो? सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, आप भवान वेद समस्त गुह्यम, आप सारे वेदों को जानते हो, और साथ साथ में मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपका शिष्य होने के नाते एक गुरु को शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। मैं अपनी असंतुष्टि का कारण मैं स्वयं पता नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरे गुरु हो इसलिए आप जानते हो। तो स्वयं आप कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार हो। नारद जी जो है कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार है। कौन सा शक्ति आवेश अवतार है? वो भक्ति शक्ति का आवेश अवतार है, जो सारे जगत को पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, सम्मान करते हैं। कृष्ण स्वयं अभिघ्न स्वरा अभिघ्न है, सब कुछ जानते हैं, वैसे कृष्ण के आप शक्ति आवेश अवतार हो नारद जी, तो मेरी असंतुष्टि का कारण आप ही जान सकते हो। आपसे बढ़कर ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे बारे में जानता हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य होने के नाते गुरु मेरे बारे में जानते हैं, तो इसलिए आप ही मेरे बारे में कहिए। तो व्यास देव आगे कहते हैं कि त्वम पर्यटर्क इव त्रिलोकी अंतर अंतरोश्च वायुरिवात्म साक्षी। तो व्यासदेव नारद मुनि को तुलना करते हैं सूर्य के जैसा। सूर्य हर जगह उपस्थित है प्रकाश के रूप में, और वायु जो है वो भी हर जगह है। तो नारद मुनि का तुलना सूर्य से करते हैं और वायु से करते हैं व्यासदेव। व्यासदेव कहते हैं नारद जी आप सूर्य के भांति आप हर जगह उपस्थित हो, वायु के भांति आप हर जगह उपस्थित हो। इसका अर्थ क्या है? आप मेरे हृदय में भी निवास करते हो, इसलिए मेरे हृदय में जो अज्ञान है वो आप ही जानते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मुझे आप आदेश दीजिए, मुझे क्या मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे व्यास देव ने नारद जी का शरण लिया। अब देखिए ज्ञान तभी दिया जाता है शिष्य को जब शिष्य शरण ग्रहण करता है। भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय में शुरुआत में भगवान ने दो श्लोकों को उच्चारण किया अर्जुन को, लेकिन वो श्लोक अर्जुन को शिष्य के रूप में वर्णन करते हुए नहीं है, अर्जुन को मित्र के रूप में संबोधित करते हुए भगवान ने दो श्लोकों उच्चारण किया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनारिष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, ये श्लोकों को उन्होंने उच्चारण किया। तुरंत जैसे अर्जुन ने शरण लिया भगवान कृष्ण का, शरण लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया। उसी प्रकार इधर क्या हुआ, व्यासदेव का शरण लेते ही, नारद जी का शरण लेते ही तुरंत नारद जी उपदेश देना शुरू करते हैं। क्या उपदेश दिए उन्होंने? नारद उवाच भवतादुत प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासुन तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। नारद जी ने सीधा कह दिया व्यासदेव को कि आपका सबसे बड़ा जो तकलीफ है या आपकी रचनाओं में सबसे बड़ा कमी क्या है कि यशो भगवतो अमलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। हे व्यासदेव, आपने भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की जो यश या गुणगान है, उन गुणगान को आपने वेदों में या महाभारत में नहीं किया। तब व्यासदेव ने कहा नहीं, मैंने तो किया है, इन इन इन, इन गुणगान को किया है, भगवान की यश को गुणगान किया है। जैसे विष्णु पुराण में कृष्ण की लीलाएं हैं और अन्य पद्म पुराण में भी कृष्ण की लीलाएं हैं, स्कंद पुराण में है, अनेकों अनेक पुराणों में हमको प्राप्त हो रहा है, मैंने किया है भगवान की लीलाओं का वर्णन। तब नारद जी कहते हैं हे व्यासदेव, आपने कृष्ण की लीलाओं को अन्य देवताओं का जो लीला है उनके साथ में डाल दिया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण की जो लीलाएं हैं और एक लीला है, सारे अन्य पुराणों में ये सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है। लोग देखेंगे कृष्ण का लीला भी है, उधर इंद्र का लीला भी है, गणेश का लीला भी है, ठीक है जो अच्छा लगता है पढ़ो क्योंकि सब समान है। तो ये सबसे बड़ा धोखा का कारण है, सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, देवताओं की लीलाएं भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई कृष्ण की लीलाओं को अन्य देवताओं की लीलाओं के साथ में डाल दिया तो क्या हुआ? ये कृष्ण की लीलाओं के प्रति अपमान हुआ, अपराध हुआ। यानी दूसरे शब्दों में नारद जी कहते हैं व्यास देव को, व्यास देव आपने इन पुराणों का रचना करके कृष्ण के प्रति अपराध किया। बड़ा, बहुत बड़ा सेंटेंस है। ने कहा कि भले ही आपने कृष्ण की लीलाओं का अन्य पुराणों वर्णन किया, लेकिन जो अन्य पुराण पढ़ता है वो क्या समझता है कि ये भी और एक लीला है। चाहे आप देवी भागवत पढ़ो या कृष्ण लीला पढ़ो या आप अन्य कोई अन्य देवताओं का लीला पढ़ो, तो सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सभी दिव्य हैं, ऐसा लोग सोचेंगे। ये सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है। बाद में यथा धर्मादयश्चार्त मुने वर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तितः। तब व्यासदेव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ पुराण है विष्णु पुराण में उसमें तो वर्णन किया है काले विष्णु का लीला है, कृष्ण की लीला है। तब दूसरा तकलीफ क्या है अन्य पुराणों में कि हे व्यासदेव अनुवर्तिनः अनुवर्णिनः, आपने कृष्ण लीलाओं को बार बार वर्णन नहीं किया। यानी आपको ऐसा ग्रंथ का रचना करना होगा जिसके अंदर केवल कृष्ण की लीलाएं हो और कृष्ण की लीलाएं प्रत्येक श्लोक में कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन हो, और कोई नहीं होना चाहिए। जब तक आप ऐसा ग्रंथ का रचना नहीं करोगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। ये नारद जी का कहना है व्यासदेव को। व्यासदेव एक माध्यम है, व्यासदेव के द्वारा नारद मुनि हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं, जब तक केवल कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम कृष्ण कथा को बार बार नहीं सुनेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। कभी एक सुना कभी ये सुना, अरे चलो आज थोड़ा भागवत सुन लेते हैं, कल पिक्चर देख लेंगे, फिर चलो आज तो ये भागवत है बाद में दैवी भागवत है, भाभी चलो ये पुराण है बाद में ये पुराण है, इसमें कोई संतुष्टि होने वाला है। संतुष्टि तभी आएगी जब केवल कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, जब केवल कृष्ण के कथा को बार बार श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण कथा, कृष्ण कथा को बार बार, बार बार का अर्थ क्या है, नित्य। इसलिए शुरुआत में क्या कहा गया है, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का अर्थ क्या है, हर रोज हर पल केवल कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में हम नहीं सुनेंगे, ये प्रण लेना है, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। तब आगे कहते हुए और एक तकलीफ है, आपने इन सारे वेदों को अन्य पुराणों को महाभारत को वर्णन करके आपने क्या किया, आपने और एक गड़बड़ कर दिया। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, आपने भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो इसका चर्चा नारद जी व्यासदेव को कहते हैं, हे व्यासदेव आपने भक्ति का वर्णन प्रत्येक श्लोक में करना चाहिए था। क्योंकि व्यासदेव कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने अन्य पुराणों में महाभारत में भी भक्ति का वर्णन किया है। नहीं, आपको ऐसा ग्रंथ का वर्णन करना होगा या ऐसा ग्रंथ लिखना होगा जिसके अंदर हर एक श्लोक में केवल भक्ति का ही उल्लेखन हो। अब देखिए भागवत की विशिष्टता क्या है, केवल कृष्ण लीला है, प्रत्येक श्लोक में कृष्ण का ही वर्णन है। दूसरा, तीसरी बात क्या है, भक्ति के अलावा कोई अन्य मार्ग का वर्णन नहीं है। ये तीन चीजें भागवत में विशिष्ट रूप में पाया जाता है। जो जब तक आप ऐसा ग्रंथ का रचना नहीं करोगे जिसके अंदर अंदर केवल कृष्ण कथा है, प्रत्येक श्लोक कृष्ण कथा को इंगित करता है, और तीसरा केवल भक्ति को ही वर्णन करने वाला श्लोक होना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भक्ति का वर्णन किया है अन्य श्लोकों में, अन्य पुराणों में। तब नारद जी व्यास देव को कहते हैं, हे व्यास देव, आपने भक्ति का जरूर वर्णन किया है, विष्णु पुराण में अन्य पुराणों में भक्ति का वर्णन किया है, मैं मानता हूं। ज्ञान और कर्म को तो आपने त्याग किया है, फिर भी आपने एक बहुत बड़ा घातक कार्य किया है। अन्य रचनाओं में, वेदों में, अन्य जगह क्या कार्य किया है, भक्ति का पूरा वर्णन करके अंत में आपने क्या कह दिया, इस प्रकार भक्ति करने के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त होगा। ये भक्ति के प्रति अपराध है। कोई ऐसा कहें आप भक्ति करने के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगा, तो इस प्रकार कहना है सरल भाषा में, आप इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद आपको चपरासी का नौकरी मिलेगा, इंजीनियरिंग करने का चपरासी का नौकरी मिलेगा, ये कोई बात हुआ? ये मुक्ति जो है वो मुक्तांजलि स्यात्, जो भक्त की सेवा करने के लिए तैयार है, वो गेट के पास तैयार है, भक्त के घर के गेट के पास। और मुक्ति कहती है मैं अंदर आ सकती हूं, भक्त कहता है नहीं चाहिए मुझे, जाओ, आई डोंट वांट, आप गेट के पास ही रहना। यानी भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। अगर कोई कहे कि भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलता है, ये भक्ति के प्रति अपराध है। अब देखिए नारद व्यास संवाद में कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको प्राप्त हो रहा है। एक कृष्ण कथा भले ही वर्णन हो रहा है, अगर कोई वक्ता है वो कृष्ण कथा कहता है, आप सब कृष्ण भक्त हो, चलो मैं कृष्ण कथा कहता हूं। अच्छा दूसरी जगह निमंत्रण मिला, गणेश की भक्त है, चलो मैं गणेश कथा कहता हूं, तो वो व्यक्ति भागवत को स्पर्श नहीं कर सकता, वो भागवत की वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत में स्वयं नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, व्यासदेव तुमने बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ है? पुराणों को रचना करके लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया है। आपको ये पुराण वेद रचना करना ही नहीं चाहिए था, केवल भागवत को ही रचना करना चाहिए था, क्योंकि अन्य पुराणों को रचना करके आपने लोगों के मन में शंका डाल दिया है, लोगों के मन में एक प्रकार का कृष्ण के प्रति अविश्वास डाल दिया है। कृष्ण को अन्य देवताओं से तुलना करना इस प्रकार है, भले ही कृष्ण का सुंदरता का वर्णन है, लेकिन कृष्ण कथा का, कृष्ण का सुंदरता की लीलाओं को वर्णन करके तुरंत उसी अध्याय में या उसी अन्य ग्रंथ में, उसी ग्रंथ में अन्य अध्याय में अगर कोई अन्य देवता का लीला का वर्णन है, समझ लीजिए तो इस प्रकार है। अगर मान लीजिए बहुत सुंदर स्त्री है, उनका गुणगान हो रहा है, आप इतना महान सुंदर हो, इतने अच्छे हो, वो हो वो हो, खुश हो रही है, बाद में तुरंत अंत में कह दिया, देखो देखो ये भैंस देखो, ये भी बहुत सुंदर है, यानी तुरंत भैंस का भी सुंदरता का वर्णन कर दिया, तो उस स्त्री का क्या होगा? भले ही आपने सुंदर शब्दों में उस स्त्री का वर्णन किया है, लेकिन उसके साथ साथ में भैंस का भी वर्णन किया है, तो क्या हुआ उसका? लोग क्या सोचेंगे, उस स्त्री क्या सोचेगी? उसी प्रकार कृष्ण का वर्णन हुआ है बड़े बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा, साथ साथ में अन्य लोगों का भी वर्णन हुआ है, तो लोग सोचेंगे सब समान है, ये बड़ा अपराध है। तो ये तीन विशिष्ट कारण बताया। बाद में आगे नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, हे व्यासदेव, आपने वेदों का रचना किया ना, वेदों में आपने कर्म कांड की रचना की। एक कर्मकांड ऐसी चीज है, ऐसी घातक चीज है, जो भी व्यक्ति कर्मकांड को पढ़ता है या कर्मकांड को अपने जीवन में आचरण करता है, वो व्यक्ति विषयर भांडा, वह जहर पीने के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मकांड है वो व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की ओर लेके जाता है और भावबंधन में फंसा देता है। तो नारद जी कहते हैं व्यास देव को, हे व्यास देव, आपने ये कर्मकांड को रचना करके लोगों के अंदर जो पहले से ही जो पागलपंती है उस पागलपंती को और बढ़ा दिया है। अब देखिए आप सोच सकते हैं किस प्रकार की बातें नारद जी कहते हैं व्यास देव को। नारद जी ऐसे ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर कोई सुने तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं नारद जी, ये क्या नारद जी क्या ये बोलने वाले। सही बात है, नारद जी व्यास देव जो सारे चार वेदों की रचयिता है उन व्यास देव को नारद जी कहते हैं, हे व्यास देव, वैसे भौतिक जगत में लोग जो है इंद्र तृप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको चाहिए इंद्रियों को संतुष्ट करने की चीजें, आपने क्या किया उसके अंदर और जहर डाल दिया है, चलो और इंद्र तृप्ति लो करो, सब लोग मजा करना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, आपने वेदों की रचना करते उनको रचना करके उनको और मजा करने का मौका दे दिया, यानी पहले से वो पागल है। पागल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इंद्र तृप्ति के पीछे भागता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नृणम प्रमत्त कुरुते विकर्मा इंद्रिय प्रिया प्रणोति, जो अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए जाता है वो प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ क्या है संपूर्ण रूप में, मत्त का अर्थ क्या है पागल। वैसे लोग बोलते रहे ये तो पागल हो गया, लोग हम लोग पागल खाने में पागल है, प्रहलाद महाराज के अनुसार इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति पागल है, क्यों, क्योंकि इंद्र तृप्ति की ओर भाग रहा है, जो भी इंद्र तृप्ति करना चाहता है वो पागल है, ये प्रहलाद महाराज ने कहा। और नारद जी उसी बात को कहते हैं, व्यास देव पहले से ही लोग इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, यानी पहले से ही लोग पागल हैं, और आपने वेदों में इंद्र तृप्ति करने की अनेकों विधियों का वर्णन किया, इस जगत में इंद्र तृप्ति करने की विधि का वर्णन किया, आपने वही वेदों में वही कर्मकांड में आपने स्वर्ग जाके इंद्र तृप्ति करने की विधि का वर्णन किया, तो उनको ये पागलों को और मौका मिल गया है और पागल बनने की, तो इसलिए आपने वेदों को करके किया। तो व्यास देव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कर्मकांड और अन्य चीजों को वर्णन उस उद्देश्य से नहीं किया था, मेरा उद्देश्य था कि सब ये करते करते लोग जो है कृष्ण की शरण में आएंगे। तब व्यासदेव हंसते हुए, नारद जी हंसते हुए कहते व्यासदेव को, भले ही तुम्हारा कोई उद्देश्य कुछ भी उद्देश्य क्यों ना हो, लेकिन लोग जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों का कर्म करके उसका फल को भोगने की, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो आपने कुछ विधियों का वर्णन किया, कुछ कर्म के विधि जिसके द्वारा आप कुछ फल प्राप्त करोगे उस फल को भोग सकते हो, और साथ साथ में आपने निषेधों को भी वर्णन किया है, हे व्यास देव आप ये समझो कि लोग क्या करेंगे, विधि इंद्र तृप्ति की विधि को तो पालन करेंगे लेकिन निषेध के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे, आपका भले ही कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो लेकिन लोग जो हैं, लोगों की प्रवृत्ति है जब तक उनको उनका अपने सामने लोगों के सामने सत्य को पेश नहीं करोगे और सत्य को यथारूप में प्रस्तुत नहीं करोगे, तुम ये शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, हमको इस भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जब तक इन बातों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं करोगे लोग जो हैं सोचेंगे व्यासदेव ने कहा इंद्र तृप्ति करो, व्यासदेव ने कहा कर्मकांड करो, वो वही करते जाएंगे, कभी भी वो कृष्ण का शरण नहीं ग्रहण करेंगे। अभी ये नारद जी के आर्गुमेंट से व्यासदेव के प्रति, मैंने ये अध्याय में जो भी नारद जी ने व्यासदेव को कहा संक्षिप्त में प्रस्तुत किया, अभी थोड़ा सा कुछ श्लोकों के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला कृष्ण कथा, कृष्ण कथा ही होना चाहिए भागवत में, यानी नारद जी कहते व्यासदेव को आप ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर केवल कृष्ण कथा ही हो, केवल कृष्ण कथा ही हो, केवल कृष्ण कथा ही हो, उसके अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए। तब ये कृष्ण कथा का महिमा का वर्णन करते हैं। ये कृष्ण कथा का महिमा का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं नारद जी। क्या है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिष्ठोकम वध्यवध्यपि नामानि रूपानि अशोकितानि श्रण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके अंदर नारद जी व्यास देव को कृष्ण कथा का जो वर्णन करते हैं या कृष्ण कथा का महिमा का वर्णन करते हैं। दूसरे शब्दों में नारद जी व्यास देव को कहते हैं आप ऐसी ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर कृष्ण कथा ही हो, यानी भागवत की महिमा का इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। ये श्लोक को थोड़ा विशेष तरीके से चर्चा करेंगे क्योंकि ये श्लोक में नारद जी और व्यास के बीच जो संवाद हुआ था कितने 5000 साल पूर्व, उसी समय नारद जी ने भविष्यवाणी किया था इस श्लोक में। क्या भविष्यवाणी किया? कि आगे एक ऐसा संस्था होगी जिसके अंदर भागवत का मुद्रण होगा, प्रकाशन होगा और वितरण होगा और चर्चा होगा। वो कहां होगा? पूरा विश्व भर में होगा, विश्व भर में भागवत की चर्चा होगी। इस श्लोक में नारद जी भविष्यवाणी करते, इसलिए खास करके नारद जी 5000 साल पूर्व व्यास देव को कहते हैं भविष्य में इसका होगा। देखते हैं कैसा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, तद्वाग विसर्ग, तद्वाग तद कार्ते भगवान। शास्त्र में उपनिषदों में कहीं भी हो तद शब्द आया मतलब भगवान। तद्देजति तन्नेजति, तद कार्ते दट वो यानी भगवान। तद्वाग वाक कार्ते भगवान की वाणी यानी कृष्ण कथा, कृष्ण के संबंधित जो भी चर्चा है। तद्वाग विसर्ग, विसर्ग का अर्थ है कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि में जितने भी विसर्गो जनताग विप्लव, इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, जनता आघा, आघा का अर्थ है पाप, यानी इस भौतिक जगत की लोगों के हृदय में जो पाप है या पापमय जीवन है। विप्लवो यानी उनकी पापमय जीवन में एक बड़ा रेवोल्यूशन, विप्लव कराने वाली बात है। यानी जो कृष्ण कथा को श्रवण करता है, जो भागवत को श्रवण करता है, निश्चित रूप में उनके जीवन में या पापमय जीवन में विप्लव होगा। विप्लव का अर्थ क्या है? रेवोल्यूशन। ठीक एक दिशा में जा रहे थे, रेवोल्यूशन करते पूरा उल्टा दिशा में। अभी लोगों की पापमय जीवन में विप्लव आना या लोगों की पापमय जीवन में परिवर्तन होना, संपूर्ण परिवर्तन होना, ये कब हुआ बताइए? भागवत को प्रकाश करके 5000 साल हुआ। हो सकता है कि भागवत जो है लोग पढ़ते थे, धार्मिक लोग पढ़ते थे, सत्वगुणी लोग पढ़ते थे, कुछ ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। हो सकता है एक दो पापी का उद्धार हो गया होगा, हो सकता है एक गांव में कहीं इधर उधर हुआ है, लेकिन समूह में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, लाखों की पाप में लोगों की संख्या में उनके जीवन में परिवर्तन होना, लाखों की लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, ये कब हुआ? ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया भागवत के द्वारा ही हुआ है। आपने देखा 200 साल पहले हजारों लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया या लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया? नहीं, हो सकता है भागवत पढ़ के एक दो लोग छोड़ दिया है, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में ऐसा नहीं हुआ था। आपने कभी ये देखा है कि 500 साल पूर्व या 600 साल पूर्व 1000 लोगों ने जो नशा करते थे संपूर्ण रूप में छोड़ दिया नशा और कृष्ण भक्त बन गए, ऐसा कोई घटना दिखाई पड़ता है इतिहास में? ऐसा कभी घटना 5000 साल में कोई भी ऐसी घटना नहीं है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने पाप कार्य करना छोड़ दिया है। हो सकता है पहले से पाप कार्य छोटे हुए थे, लेकिन हजारों की संख्या में पाप कार्य छोड़ दिया, वो तभी हुआ जब प्रभुपाद जी इस भागवत को अमेरिका लेके गए। ये ध्यान में रखिए, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए उस समय उनके पास भगवत गीता का अनुवाद नहीं था, उनके पास भागवत का जो प्रथम स्कंद है उसका 3 वॉल्यूम थे बस, वही लेके गए थे। यही भागवत के बल पे ही प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरा स्कंद को स्थापना किया। इधर क्या कहा गया, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, जनता अघ विप्लव। तो प्रभु ये तो इतना सबूत नहीं है, हमको और सबूत चाहिए। आगे क्या कहा गया है, यस्मिन प्रतिश्लोकम अवध्यवध्यपि, भले ही इसका अर्थ क्या है, यस्मिन इसमें प्रतिश्लोकम हर एक जगह उसकी प्रस्तुतिकरण में अवध्यवध्यपि कहीं कहीं कमियां हैं, ग्रामर के हिसाब से हो, व्याकरण के हिसाब से हो, साहित्य के हिसाब से कहीं उसकी प्रस्तुतिकरण में कमियां हैं। रूपा जी इस श्लोक की तात्पर्य लिखते बहुत नम्रता से कि हमने भागवत को हमारी मातृभाषा में प्रस्तुत नहीं किया, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए जब इस भागवत की अनुवाद और टीका जब अंग्रेजी में हमने किया तो ये भागवत का जो अनुवाद अंग्रेजी होने के नाते हमको हमारी अंग्रेजी हमारी मेरी मातृभाषा नहीं है, इसलिए निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उधर गलतियां हो सकती है। तो नारद जी व्यास देव को कहते हैं, भले ही उस भागवत की प्रस्तुतिकरण में व्याकरण के हिसाब से हो, साहित्य के हिसाब से अवध्यवध्यपि कमियां भी क्यों ना होंगे, नामानि रूपानि यशोंकितानियत, क्योंकि ये भागवत या कृष्ण कथा भगवान की यशों को गुणगान करने के लिए लिखा गया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति का अर्थ क्या है, सुनते हैं। कौन सुनते हैं, जैसे सुनाने वाला मिलता है सुनते हैं साधवः, जैसे सुनने वाला मिलते हैं सुनाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, और सुनने वाला सुनाने वाला दोनों हैं, उस प्रसंग में जाके बैठ जाते हैं साधवः, यानी महान बुद्धिमान लोग ये कार्य करते हैं। अब देखिए विश्व भर में बुद्धिमान लोग क्या कर रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ भागवत है, उसको जैसा मौका मिलता है सुनते हैं, जैसे मौका मिलता सुनने वाले को मौका मिलता है सुनाते हैं, और जहां प्रसंग ऑलरेडी चल रहा है उधर जाके बैठते हैं। तो ये विशेषता है, यानी इस श्लोक में दो बातों को स्पष्ट रूप में नारद जी ने कहा, भविष्य में एक ऐसी भागवत का टीका होगी जो पढ़ने के द्वारा अनेकों हजारों लाखों लोग अपना पाप कार्य त्याग करके वो क्या बन जाएंगे, शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे। 5000 साल पूर्व पहले इस श्लोक में नारद जी ने व्यास देव को कहा, आपने कभी ऐसा सुना है, एक व्यक्ति ड्रग्स लेता था, अभी प्रभुपाद जी की संगति में आके भागवत पढ़ के वो चाय भी नहीं पीता है, ये कब हुआ, ये भागवत पढ़ने के द्वारा हुआ। और भागवत की टीका में ग्रामर के हिसाब से कहीं ना कहीं गलतियां हैं, प्रभुपाद जी स्वयं स्वीकार करते हैं, तो ये श्लोक में नारद जी स्वयं मानते हैं और बताते व्यासदेव को भविष्य में होने वाला है बाद में। जो भगवान की कथा को या कृष्ण कथा को सुनता नहीं है उसका क्या स्थिति है? नये त्वचस चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नेत्र हमसा निरमंत्र शिक्षया। तो नारद जी कहते व्यासदेव को, जो भगवान की वाणी का श्रवण नहीं करता है, न यद वचस चित्र पदम हरे यशो, यानी जिसकी वचस भगवान की लीलाओं के द्वारा सुशोभित नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में जो भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करता है, वैसी व्यक्ति का जो वचस है क्या है? वायसम तीर्थम उशंति मानसा, वो क्या है? वायसम तीर्थम, ऐसे लोगों का सम्मेलन जहां कृष्ण का चर्चा नहीं होता है, वो लोगों का सम्मेलन जो है वो कौओं का तीर्थ स्थान कहा गया है। कौओं का तीर्थ स्थान, जैसे कहा जाइए जब रास्ते में जाते हो, खास करके शाम की या संध्या के समय में हर सोसाइटी के नीचे बहुत सारे लोग बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी तो अभी रास्ते में भी आ जाते हैं, फुटपाथ पे बैठ जाते हैं। कहीं अभी इधर लिंक रोड से जाता हूँ तो शाम के समय देखता हूँ बहुत सारे लोग बैठते हो, एकदम पूछो डिवाइडर होता है उधर ही बैठ जाते हैं और बैठ के एकदम घंटों तक गप्पे मारते हैं। और नारद जी कहते हैं ये जो गप्पे मार रहे हैं ये क्या है? वायसम तीर्थम, कौओं का तीर्थ स्थान है, मनुष्यों का तीर्थ स्थान नहीं है, मनुष्यों का सम्मेलन नहीं है। जैसे बहुत सारे संगठन है, उन संगठन में कृष्ण का चर्चा नहीं होता है, वो भागवत के अनुसार वो कौओं का संगठन है। अभी देखिए कौओं का संगठन कैसा है, जब 10 कौवे इकट्ठा होते हैं तो हर कौवा बात करना चाहता है। आपने देखा कोई कौवा सुनना चाहता है, कोई कौवा सुनना नहीं चाहता है, हर कौवा बात ही करना चाहता है। तो ये भौतिकवादियों का चर्चा ये का विशेषता है, जहां कृष्ण कथा नहीं होता है, जहां भौतिक बातें होता है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, एक व्यक्ति भी दूसरा को सुनना नहीं चाहता है कि नहीं? तो वैसी जो जगह है जहां कचरा पड़ा हुआ है उधर ही कौवे जाता है। साफ सुथरा जगह पे कोई कौवा के बैठता है? कभी नहीं बैठता है। जहां कोई दुका है, जहां कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई जूठे बर्तन है, सड़ा हुआ चीज है, सब कौवे आ जाएंगे। तो नारद जी व्यास जी को कहते हैं ऐसे लोग जो कृष्ण कथा नहीं करते वो लोग कौवे के समान हैं, वहां जीत जूटा कचरा पड़ा हुआ है वो सब लोग एकत्रित होते हैं और सब लोग बोलना चाहते हैं। ये कौओं का और एक विशेषता ये है, कौओं का कौवा ही एकमात्र योनि है, एकमात्र स्पीशी है जिसकी भाषा नहीं है। अगस्त जी कहते हैं एक पुराण में, हर एक जीव का कुछ ना कुछ भाषा होता है, चींटियों का भी भाषा होता है, लेकिन कौवा ही एकमात्र योनि है जिसका कोई भाषा नहीं, यानी एक कौवा दूसरे से क्या कह रहा है वो दूसरे को मालूम नहीं है, काली काव काव करता है, देवी काव काव करता रहता है, ये क्या उसको बोल रहा है नहीं मालूम। जैसे कुत्ते का भाषा होता है, एक कुत्ता भौंकता है तो दोस्त सुनता है उसका रिप्लाई देता है, लेकिन कौवे का ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? एक कौवा दूसरे को क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, यानी निरर्थक है। यानी जो व्यक्ति अगर मान लो कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा है या सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका बोलना क्या है? निरर्थक है। यानी हमारी वाणी कृष्ण के संबंध में नहीं है, हम केवल हमारी वाणी को, वाणी की शक्ति जो है गवा रहे हैं, निरर्थक बातें हैं, इसमें कोई रुचि नहीं रखना चाहिए। ये बात नारद जी व्यास देव को कहते हैं। इसलिए नारद जी का प्रवचन बहुत हेवी प्रवचन है। जो भी व्यक्ति सच में भागवत क्या है जानना चाहते हैं, नारद व्यास संवाद पढ़ना होगा, क्योंकि नारद जी जो है वो उनका जो प्रवचन है हमेशा निवृत्ति मार्ग के ऊपर रहता है, जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। भले ही हंसते हंसते रहते हैं, नारायण नारायण बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो प्रवचन देना शुरू करते हैं नारद जी, एक प्रवचन में 10,000 दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बना दिया। ये नारद जी, दक्ष को बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा मैं और 1,000 पुत्र को उत्पन्न करता हूं, चलो इनका करके दिखाओ। तो नारद जी कम से कम पहले 10,000 पुत्रों को लंबा चौड़ा प्रवचन दिए थे, दूसरा 1,000 पुत्रों को सन्यासी बनाने में उनको एक ही मिनट लगा। इसलिए नारद जी को दक्ष ने शाप दिया। क्या शाप दिया? कि आप एक जगह कभी नहीं रुक सकते हो, आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो नारद जी और प्रसन्न हो गए, बोला कि ये कार्य मैं बहुत जगह कर सकता हूं, अभी अगर एक ही जगह रहूंगा तो कई कार्य नहीं कर पाऊंगा। ये निवृत्ति मार्ग के आचार्य नारद जी, अभी वो नारद जी का प्रवचन है इधर। अगर कहीं भी, जहां कहीं भी भागवत कथा हो, नारद जी का प्रवचन नहीं सुनाए तो भागवत के प्रति ये अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत की शुद्धता यानी कृष्ण का संपूर्ण शरण लेने की जो उपदेश है, ये जितना नारद व्यास संवाद में व्यक्त होता है और कोई संवाद में इतना शुष्क रूप में व्यक्त नहीं होता है। भले ही बोले लेकिन जैसे हथौड़ा से मार मार के जो बताया जाता है वो नारद व्यास संवाद में प्रकट होता है। अब देखिए व्यास देव की महिमा कहाँ कहाँ कहा गया है, अनेकों जगह कहा गया है। ये जो पीठ है उसको व्यास पीठ कहा गया है। वैसे व्यास देव को नारद जी क्या कहते हैं, तुमने लोगों को और पागल बनाया है वेदों को अर्चना करके। हे व्यास देव, तुमने अन्य पुराणों की रचना करके कृष्ण के प्रति अपराध किया है। वही व्यास देव को जो सारा जगत भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, उस व्यास देव की कृति को, उन व्यास देव के द्वारा लिखा गया ग्रंथों को, उन व्यास देव को डांटते हुए हंसते हंसते डांट रहे नारद जी। क्या कहते हैं? नारद जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्म सूत्र का रचना किया आपने, जिज्ञासितमदीतम च ब्रह्मयत् सत् सनातनम, वेदांत सूत्र का रचना किया, इतना सब कुछ रचना करने के बाद भी आपको मालूम नहीं है भक्ति का, मुक्ति का साधन बनाया आपने, भक्ति की श्रेष्ठता को आप जानते नहीं हो। ऐसा उन्होंने खुलेआम डांटा व्यासदेव को और कहा व्यासदेव को आप ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर मैंने जो कहा उस इस प्रकार की टूटियां नहीं होना चाहिए, तभी आप संतुष्ट हो सकते हो। अभी देखिए व्यासदेव स्वयं सारे पुराणों की रचयिता है, सारे वेदों की रचयिता है, महाभारत की रचयिता है। जब स्वयं इन चीजों की रचयिता संतुष्ट नहीं है, उसको पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा? कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक भागवत को नहीं पढ़ता, जब तक भागवत का आस्वादन नहीं करता, तब तक कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं तत्व संदर्भ में, जब कोई अन्य पुराणों का प्रमाण देता है, ये प्रमाण है, प्रमाण का अर्थ आर्ग्यूमेंट है। जैसे कोई कोर्ट होता है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत सारा लॉ बुक होता है, बहुत सारा जैसे इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है। बताइए संविधान कितना भी क्यों ना हो, लॉ बुक्स कितना भी क्यों ना हो, आर्ग्यूमेंट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो सब तभी तक चलता है जब जज जजमेंट देता है। वेद पुराण इतिहास ये जितने भी ग्रंथ है वो सब क्या है, शास्त्र है, वो सब ग्रंथ है, और अन्य जितने भी उसके ऊपर परामर्श होता है, चर्चा होता है, वो सब आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन भागवत जो है वो न्याय है या जजमेंट है। जैसे भागवत का एक श्लोक आया बाकी सब चुप हो जाना चाहिए, बाद में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। एक जज अपना न्याय देने के बाद सब लॉयर चुप हो जाते हैं, सारे कानून चुप हो जाता है। वैसे ही जैसा भागवत हुआ, भागवत का श्लोक को प्रकाशित किया, भागवत का ग्रंथ को प्रकाशित किया, सारे वेद पुराण इतिहास जितने भी ग्रंथ है, जितने भी लोगों का तर्क है, न्याय शास्त्र है, सारे दार्शनिक है, सबको चुप होना पड़ेगा। ये भागवत की महिमा है। आगे नारद जी क्या कहते हैं, नैष्कर्म्यम न प्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुत पुनः शाश्वत अद्भद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपकर्मणम। नारद जी कहते हैं, हे व्यासदेव, आप देखो कि आपने ये कार्य किया है, वेदों का रचना किया है, और उसके अंदर आपने कर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया है, लेकिन हे व्यासदेव सुनो, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। भले ही निरंजन ज्ञान है, ब्रह्म तत्व को वर्णन करने वाला ज्ञान है, अगर उसके अंदर कृष्ण लीलाएं नहीं है, वो ज्ञान भी बेकार है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसके अंदर कृष्ण कथा नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान भी बेकार है। ऐसा है तो भले ही निष्काम कर्म है, अगर वो कर्म कृष्ण के लिए नहीं किया गया है, वो कर्म भी बेकार है। लोग बोलते ना, हम तो निष्काम कर करते हैं प्रभु जी, हम तो बस लोगों को भला करते हैं प्रभु जी, वो भी बेकार है अगर वो कृष्ण के लिए नहीं किया गया है तो। ये किसका कहना है? नारद जी का कहना है। किनको? व्यासदेव। व्यासदेव के द्वारा हम सबको कह रहे हैं। लोग सोचते हैं हम तो निष्काम कर्म करेंगे, कृष्ण का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा कर्म जो है वो भी बंधन का कारण है। भक्ति के बिना अगर कितना ही बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, स्पष्ट रूप में नारद जी कहते हैं उस व्यक्ति को वापस कर्म बंधन में आना होगा। मुक्त जीव भी, ये ध्यान में रखिए, मुक्त जीव भी अगर कृष्ण का भक्ति नहीं करता है या कृष्ण की भक्ति में अपराध करता है, वापस उसको कर्म बंधन में आना होगा। ये वर्णन है हरि भक्ति सुबोधे में। अगर मुक्त जीव भी क्यों ना हो, भगवान का रथ जब निकलता है, वो सोचे मैं तो मुक्त हूं, ये सब बद्ध जीव है, उनके लिए भक्ति है, चलो उनको रथ के पीछे जाने दो, मैं तो ऐसे बैठा रहूंगा, रथ को जाने दो, रथ यात्रा को, उसको वापस कर्म बंधन में फंसना होगा। उनके अंदर वापस विषय वासना जागृत होगी। ये हरि भक्ति सुबोधे में स्पष्ट रूप में कहा गया है। मुक्त जीव भी वापस भौतिक जगत में आता है, संसारी बन जाता है मुक्त जीव। आगे कहा गया है भागवत में, बारहवें आगे स्कंदों में, बारहवें स्कंद में लगता है या दसवें स्कंद में कहा गया है इस बात को, आरुह कृच्छेण परम पदम पतंती। आरुह कृच्छेण का अर्थ क्या है? भले ही महान स्तर में पहुंचने के बाद भी, यानी मुक्त होने के बाद भी, बड़ा ज्ञानी पंडित है, इस भौतिक जगत में किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षण नहीं होने के कारण वापस उनको इस जगत में आना पड़ेगा। इसलिए हमको बड़ा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल एक ही आवश्यकता है, क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। कृष्ण प्रेम ही एकमात्र हमारी आवश्यकता है। नारद जी स्पष्ट रूप में इस बात को कहते हैं, हे व्यासदेव, अगर तुम्हारे द्वारा लिखा गया सारा वेद पुराण इतिहास साहित्य सब कुछ ना भी हो, इस जगत में कोई नुकसान नहीं है। अगर वो सब कुछ है, भागवत नहीं है, तो इस जगत का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? सब लोग वैसे ही दुखी है, वेदों को रचना करके दुखी हो, रचना करने वाला दुखी है, तो पालन करने वाला कैसे दुखी सुखी हो, कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है? तो आगे कहते हैं, अतो महाभाग भवान नमो भद्रिक शुचि श्रव सत्य रतो धृत व्रत कुरुक्रमास्या किल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। तब व्यासदेव के मन में प्रश्न आया, कि प्रश्न पूछे नहीं है, प्रश्न आया, उसका नारद मुनि वापस उसका जवाब देते, अच्छा हम आप बोल रहे हो ये सब बातें, तो मैं लिखना चाहता हूं उस भागवत को जिसके अंदर केवल कृष्ण कथा हो और बार बार कृष्ण कथा की वर्णन हो और भक्ति का ही वर्णन हो हर हर एक अक्षर में, और अंततः मुक्ति से बढ़कर है भक्ति, इस बात की स्थापना हो और कर्म की जरा सा भी उल्लेखन ना हो और ज्ञान का जरा सा भी उल्लेखन ना हो, वैसा ग्रंथ को रचना करना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे रचना करूंगा उसको, इतना शुद्ध इतना पवित्र ग्रंथ को? उसका विधि स्वयं नारद जी व्यास जी को कहते हैं, क्या विधि बताते हैं? अहो महाभाग, आप महाभाग्यवान हो, आपका भाग्य क्या है? भाग्य ये है कि आपको ये सुनने का मौका मिल रहा है। महाभाग भवान अमोघद्रित, आपके अंदर कोई मोग नहीं है। सुचिश्रवः, आपने बहुत सुंदर रूप में मैंने जो भी कहा है वो सुना है। सत्य रतो, मैं जानता हूं आपका व्रत जो है सत्य है, आपका बुद्धि भी बहुत शुद्ध है। उरुक्रमस्या किल बंध मुक्तये, उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का आप वर्णन करोगे जिसके द्वारा सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है, वो कैसे करोगे? समाधि नानुस्मरण तद विचेष्टम। क्या कर सकते हो? अभी मैंने जो कहा सुचिश्रवा सत्यरतो सत्यदिता या सबके अंदर महान गुण है, आपको क्या करना होगा? समाधि नानुस्मर, समाधि नानुस्मर का अर्थ क्या है कि आप जिस जगह मैंने अभी आपको उपदेश दिया है यानी सम्यक प्रास, ये व्यासदेव का स्थान है बद्रिकाश्रम में, उधर आप समाधि में जाओ। समाधि में जाके आप केवल भगवान कृष्ण का ही स्मरण करो, और जैसे भगवान कृष्ण का अनुस्मरण करोगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में लीलाएं करेंगे, और आप इन लीलाओं को देखोगे आपके हृदय में, और उन लीलाओं को देखते देखते आप उस भागवत की रचना करो। यानी दूसरे शब्दों में जो भागवत हमारे सामने है वो व्यास देव ने कैसे लिखा, व्यास देव जी उसको कैसे लिखे, भगवान की लीलाएं उनको पिक्चर के रूप में हृदय में दिखाई पड़ रहा था। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान की लीलाएं संतों की हृदय में भक्तों की हृदय में सदैव दिखाई पड़ता है, शुद्ध भक्तों की हृदय में वो लीलाएं दिखाई पड़ता है, स्फुरित होता है, और उन लीलाओं को हृदय में दर्शन करके भक्त लोग अपना ग्रंथों की रचना करते हैं। वैसे ही व्यास देव ने अपनी मनमानी नहीं लिखा भागवत को, उनके हृदय में भगवान में विचेष्टितम कृष्ण ने जिन लीलाओं को दर्शाया उन्हीं लीलाओं को जिस प्रकार व्यास देव दर्शन कर रहे थे उसी प्रकार व्यास देव लिखते गए श्रीमद् भागवत। व्यासदेव भागवत लिखना का अर्थ क्या है, वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, ये भागवत की महिमा है। वैसे इस श्लोक में अनेकों अनेकों और श्लोक है जो अति अति पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली श्लोक है। एक एक श्लोक खास करके इस अध्याय में बम जैसे है, वो सुनने से ऐसा हृदय के अंदर धड़कन होता है, कंपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि नारद जी ने ऐसा पावरफुल श्लोकों को इस श्लोक में उच्चारण किया, तो भागवत की पवित्रता है, ये शुद्धता है। वैसे तो आज हमको सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का चर्चा करना था, लेकिन कल हम चर्चा करेंगे थोड़ा संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद। तो ये बातों को इसलिए कहना पड़ रहा है, भागवत कब और कहाँ कहा गया था? सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज कह रहे थे, परीक्षित महाराज का मृत्यु एक हफ्ते में होने वाला है, बहुत सीरियस बात था ये मजाक वाली बात नहीं था। अगर आपको कहा जाए एक हफ्ते में आपका मृत्यु है, क्या आप हंसेंगे? आप टीवी देखेंगे, चाय पीने जाएंगे? नहीं, ये गंभीर समय था, तो गंभीर समय में गंभीर बातों को चर्चा किया गया है, और नारद व्यास संवाद में ये गंभीरता का स्पष्ट उल्लेखन हुआ है। आप भक्तों को कभी मौका मिले भागवत का ये जो प्रसंग है नारद व्यास संवाद, उसको आप पढ़िए और उसके ऊपर विचार कीजिए, क्योंकि मैंने पहला दिन ही कहा था भागवत केवल सुनने के लिए नहीं है। सुपठन तत् शृण्वन, पहले सुनना है, सही बात है, सुपठन, उसको पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचारण परो, विचार करना चाहिए, तब देखिए हृदय में भक्ति प्रकट होगा, तब देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। तो इधर हम समाप्त करते हैं ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इससे समय प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण नाम उच्चारण जोर से करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न जोर से नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जैसे कि हमने बोला था कि हमारे इस्कॉन संस्थान में दिन में आरतियाँ होती है, सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती होने के बाद तुलसी आरती होती है, तो वो अभी बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जैसे कि हमने कहा था कि
वो किधर गया वो बच्चा का, इसका सफेद कपड़ा में किधर गया उसका, वाह इधर इधर ही गया, फिर है ना बात
और एक अनाउंसमेंट है लड़कों के लिए, जो युवक लड़के हैं उनके लिए प्रोग्राम हर रविवार को होता है, 15 से 30 साल के लड़कों के लिए हर रविवार को 12 बजे होता है।
जितना आगे सुनते जाएं बम डिस्पोट है।
एक सोने का चेन मुझे मिला है, अगर आपको किसी का है आप आ सकते हैं इधर लेने के लिए। हरे कृष्णा प्लीज आप लोग बैठिए, बच्चों को उत्साह दीजिए।
कोई लेने को नहीं तो राजा की